नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास इतिहास के कुछ बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज हैं।
हाँ, और ये महात्मा गांधी और भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन पर केंद्रित है।
बिल्कुल, और हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है बल्कि उनके पीछे की रणनीति और उनके असर को समझना है।
हाँ, मतलब हम ये देखेंगे कि गांधी जी ने कैसे स्वतंत्रता संग्राम को कुछ पढ़े लिखे लोगों की बहस से निकालकर एक जन आंदोलन में बदल दिया।
तो चलिए इस गहरी चर्चा को शुरू करते हैं। हम एक एक करके प्रमुख आंदोलनों को समझेंगे।
असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। तो शुरुआत करते हैं पहले बड़े आंदोलन से। सवाल है Q.82, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर इनिशिएटिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी।
तो वो क्या वजह थी जिनकी वजह से ये आंदोलन शुरू हुआ?
देखिए, ये कोई एक अकेली वजह नहीं थी, मतलब तीन बड़ी वजह एक साथ आ गई थी।
अच्छा।
सबसे पहली और तात्कालिक वजह थी द रोलेट एक्ट। ये 1919 में आया था।
हाँ, ये तो बहुत ही कठोर कानून था।
बहुत ज्यादा। बेसिकली ये अंग्रेजों को किसी भी भारतीयों को बिना मुकदमे के जेल में डालने का अधिकार देता था।
और इसी के विरोध में फिर जलियांवाला बाग की वो भयानक घटना हुई है ना?
बिल्कुल। 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग मैसेकर। इस एक घटना ने, आप कह सकती हैं, पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तो ये पहली वजह थी।
ठीक है, और दूसरी?
दूसरी वजह थोड़ी अलग थी। वो भारत के बाहर से जुड़ी थी, द खिलाफत इशू।
हाँ, ये तुर्की के सुल्तान से जुड़ा मामला था।
सही। पहले विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान, जिन्हें मुसलमान अपना कैलिफ मानते थे, उन पर एक बहुत कठोर संधि थोप दी थी।
तो गांधी जी ने इस मुद्दे को राष्ट्रवादी आंदोलन से कैसे जोड़ा?
यहीं पर गांधी जी की राजनैतिक समझ दिखती है। उन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक बहुत बड़े मौके की तरह देखा।
अच्छा।
उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और इससे भारत के मुसलमान भी राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ गए।
और फिर तीसरी वजह, जो शायद सबसे बड़ी वजह थी, स्वराज।
हाँ, डिजायर फॉर स्वराज, मतलब अब सेल्फ रूल चाहिए था। गांधी जी को ये समझ आ गया था कि एक बड़े जन आंदोलन के बिना ये मुमकिन नहीं है।
मतलब जिसमें आम लोग ब्रिटिश संस्थानों का, सामानों का, हर चीज का बहिष्कार करें।
बिल्कुल।
तो परीक्षा के लिहाज से ये तीनों पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं।
हाँ, एग्जाम पॉइंट यही है। ये 3 मार्क्स का सवाल हो सकता है। तो तीनों पॉइंट्स, रोलेट एक्ट, खिलाफत इश्यू और स्वराज को समझाना जरूरी है।
ठीक है, और रिमेम्बर दिस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ 1920 में और रोलेट एक्ट और जालियानावाला बाग दोनों 1919 में। चलिए अब एक दशक आगे चलते हैं, 1930 में। अब सिर्फ असहयोग नहीं बल्कि सीधे सीधे कानून तोड़ने की बात थी। अगला सवाल है Q.83, एग्जामिन द रीजंस एंड आउटकम्स ऑफ द सॉल्ट सत्याग्रह।
हाँ, नमक सत्याग्रह, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी।
तो इसके पीछे क्या कारण थे? नमक ही क्यों?
सबसे पहला और साफ कारण था द सॉल्ट लॉ। अंग्रेजों की नमक बनाने पर मोनोपोली थी।
मतलब कोई और नमक बना ही नहीं सकता था?
नहीं, और ऊपर से उस पर भारी टैक्स भी देना पड़ता था।
लेकिन नमक जैसी इतनी साधारण चीज।
यही तो गांधी जी की खासियत थी। उन्होंने नमक को सिंबल ऑफ यूनिटी बनाया। ये एक ऐसी चीज थी जिसका इस्तेमाल अमीर और गरीब हर कोई करता था।
मतलब ये एक ऐसा मुद्दा था जिससे हर भारतीय जुड़ सकता था।
बिल्कुल। और उन्होंने आंदोलन शुरू करने से पहले वाइसरॉय अरविन को एक अल्टीमेटम भी भेजा था।
अच्छा, एक चेतावनी?
हाँ, जिसमें कुछ मांगे थी, पर अरविन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और फिर गांधी जी ने मार्च शुरू करने का फैसला किया।
तो ये तो हुए कारण।
अब इसके आउटकम्स क्या हुए, क्या असर पड़ा इस मार्च का?
इसके आउटकम्स बहुत दूरगामी थे। पहला तो था ग्लोबल अटेंशन,
मतलब दुनिया भर की नजर भारत पर आ गई।
हाँ, यूरोपियन और अमेरिकन प्रेस ने इसे बहुत ज्यादा कवर किया। भारत का स्वतंत्रता संग्राम अब एक वैश्विक मुद्दा बन गया था। और मैंने पढ़ा है कि इसमें महिलाओं ने भी बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया था।
सही कहा आपने, ये दूसरा बड़ा आउटकम था, मैस पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन। ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलीं।
ये तो एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था।
बहुत बड़ा। और तीसरा आउटकम था वाइड स्प्रेड डिफायंस, मतलब पूरे देश में लोगों ने नमक कानून तोड़ा, दूसरे कानून तोड़े, टैक्स देने से मना कर दिया।
और सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी?
सरकार ने बहुत सख्ती दिखाई। लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
बाप रे।
लेकिन जो सबसे बड़ा असर था वो था साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अंग्रेजों को यह एहसास होने लगा कि उनका राज अब हमेशा नहीं चलेगा।
तो ये 8 मार्क्स का सवाल हो सकता है?
हाँ, एग्जाम पॉइंट यही है। इसमें 3 रीजंस और 4 आउटकम्स को डिटेल्स में समझाना होगा।
ठीक है, और रिमेम्बर दिस, सॉल्ट सत्याग्रह या डांडी मार्च हुआ 1930 में, और उस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन। अब हम आते हैं 1942 में। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है और गांधी जी ने अपने आखिरी और सबसे बड़े आंदोलन का आह्वान किया। सवाल है, Q84, एग्जामिन द कॉजेज एंड इवेंट्स ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट।
हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन, इसके भी कुछ ठोस कारण थे।
पहला तो क्रिप्स मिशन था, है ना?
बिल्कुल, फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। अंग्रेजों को युद्ध में भारतीयों का साथ चाहिए था, लेकिन वो भारत को तत्काल आजादी देने को तैयार नहीं थे,
तो कांग्रेस ने उसे रिजेक्ट कर दिया।
हाँ, और दूसरा बड़ा कारण था जापान के आक्रमण का डर।
अच्छा,
गांधी जी को लगा कि भारत में अंग्रेजों की मौजूदगी ही जापान को हमला करने का न्योता दे रही है, इसलिए वो चाहते थे कि अंग्रेज तुरंत भारत छोड़ दें।
और इसी माहौल में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया।
हाँ, 8 अगस्त 1942 को डू और डाई, ये अंग्रेजी शासन को पूरी तरह से खत्म करने की एक सीधी मांग थी।
तो इसके बाद घटनाएं किस तरह से आगे बढ़ी?
घटनाएं बहुत तेजी से घटीं। आंदोलन शुरू होते ही अंग्रेजों ने गांधी जी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया।
उन्हें लगा कि इससे आंदोलन खत्म हो जाएगा।
हाँ, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ये एक स्पॉन्टेनियस मास मूवमेंट बन गया, एक लीडरलेस मूवमेंट।
मतलब आम लोगों ने कमान संभाल ली।
बिल्कुल, खासकर युवाओं और स्टूडेंट्स ने। हड़तालें हुईं और फिर लोगों ने ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों पर हमले किए, पोस्ट ऑफिसेस, रेलवे स्टेशंस, टेलीग्राफ लाइंस।
और कुछ नेता भूमिगत होकर भी तो काम कर रहे थे।
हाँ, जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने एक अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाया।
अच्छा,
और कुछ जगहों पर तो जैसे सतारा और मिदनापुर में लोगों ने अपनी पैरेलल गवर्नमेंट्स तक बना ली थी।
मतलब वहाँ ब्रिटिश प्रशासन ठप हो गया था
पूरी तरह से। हालांकि अंग्रेजों ने इस आंदोलन को बहुत बर्बरता से कुचला, लेकिन उन्हें हालात पर काबू पाने में 1 साल से ज्यादा लग गया।
तो एग्जाम पॉइंट के लिहाज से कॉजेज और इवेंट्स दोनों जरूरी हैं।
हाँ, ये एक 8 मार्क का क्वेश्चन है, दोनों को बराबर इम्पोर्टेंस देनी है।
ठीक है।
क्विट इंडिया मूवमेंट, अगस्त 1942, नारा था डू और डाई, और अंडरग्राउंड नेता थे जयप्रकाश नारायण। ये तीनों आंदोलन हमें एक बड़े सवाल पर लाते हैं, गांधी जी ने आखिर ऐसा क्या किया कि स्वतंत्रता संग्राम कुछ गिने चुने लोगों के आंदोलन से करोड़ों लोगों का आंदोलन बन गया। सवाल है, Q86, हाउ डिड गांधी जी ट्रांसफॉर्म द नेशनल मूवमेंट इनटू अ मास मूवमेंट?
ये गांधी जी की सबसे बड़ी देन थी, उन्होंने कई तरीके अपनाए।
सबसे पहले तो उनका रहन सहन ही बहुत साधारण था।
हाँ, उनका सिंपल लाइफस्टाइल, वो एक साधारण धोती पहनते थे, आम लोगों की भाषा में बात करते थे, इसे लोग उनसे जुड़ाव महसूस करते थे।
उन्हें गांधी बाबा या महात्मा कहते थे।
बिल्कुल। दूसरा था उनका यूज ऑफ द चरखा। चरखा सिर्फ कपड़ा नहीं था, वो आत्मनिर्भरता का प्रतीक था,
और इससे हर कोई लड़ाई का हिस्सा बन सकता था।
सही बात है। फिर उन्होंने इन्वॉल्विंग न्यू ग्रुप्स, मतलब नए समूहों को जोड़ा, किसानों को, मजदूरों को, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद।
और समाज सुधार पर भी तो उनका बहुत जोर था।
हाँ, सोशल रिफॉर्म, उन्होंने छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई, दलितों को हरिजन कहा, महिलाओं को आंदोलन में शामिल किया।
तो उन्होंने विरोध के तरीकों को भी बदल दिया।
बिल्कुल, उन्होंने इलीट तरीकों को हटाकर मास सत्याग्रह को मुख्य हथियार बनाया, जिसमें हर कोई हिस्सा ले सकता था,
और ये सब एक मजबूत संगठन के दम पर हुआ।
हाँ, उन्होंने कांग्रेस के संगठन को गाँव तक पहुँचाया, यही वजह है कि लोग उन्हें एक सेवियर की तरह देखते थे। ये सब जानना बहुत दिलचस्प है, लेकिन इतिहासकारों को ये सब पता कैसे चलता है? आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। Q85, एनालाइज द स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज। मतलब गांधी जी के बारे में जानने के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं, उनकी क्या ताकत है और क्या कमजोरियां हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, किसी भी सोर्स को हमें आलोचनात्मक तरीके से देखना चाहिए।
तो पहले बात करते हैं गांधी जी के अपने लेखन की, जैसे उनके जर्नल हरिजन और यंग इंडिया।
हाँ, राइटिंग्स एंड स्पीचेस। इनकी स्ट्रेंथ यह है कि इनसे उनके विचार हमें सीधे पता चलते हैं।
लेकिन इनकी लिमिटेशन क्या है?
लिमिटेशन ये है कि ये पब्लिक के लिए लिखे गए थे, तो हो सकता है कि ये पूरी तरह से निष्पक्ष ना हो।
और उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के बारे में क्या कहेंगी?
ऑटोबायोग्राफीज की स्ट्रेंथ ये है कि वो बहुत पर्सनल होती हैं, लेकिन लिमिटेशन ये है कि वो याददाश्त के आधार पर लिखी जाती हैं।
मतलब लेखक वही बताता है जो उसे याद है या जैसा वो चाहता है कि लोग उसे देखें।
बिल्कुल
ठीक है, अब अंग्रेजों के नजरिए पर आते हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स।
हाँ, जैसे पुलिस की रिपोर्ट्स। इनकी स्ट्रेंथ यह है कि इनसे किसी आंदोलन के फैलाव को ट्रैक करना आसान होता है।
और कमजोरी?
लिमिटेशन यह है कि इनमें कॉलोनियल बायस होता है। वो आंदोलनों को लॉ एंड ऑर्डर की समस्या के तौर पर देखते हैं, एक आजादी की लड़ाई के तौर पर नहीं। निष्पक्ष नहीं होते।
मतलब एक ही घटना को भारतीय और ब्रिटिश अखबार बहुत अलग अलग तरीके से दिखाते थे।
हाँ बिल्कुल, इसलिए एक अच्छा इतिहासकार इन सभी सोर्सेस को मिलाकर ही किसी नतीजे पर पहुंचता है।
तो आज हमने गांधी जी के नेतृत्व में हुए तीन बड़े आंदोलनों को समझा और ये भी जाना कि उन्होंने कैसे पूरे देश को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा।
हाँ, और हमने ये भी देखा कि इतिहास को समझने के लिए अलग अलग सोर्सेस को सावधानी से परखना कितना जरूरी है।
सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है,
एक विचार जो सोचने पर मजबूर करता है। हमने देखा कि गांधी जी एक राजनेता थे, समाज सुधारक थे, जननेता थे, लेकिन वो अक्सर आंदोलनों को तब वापस ले लेते थे जब वे हिंसक हो जाते थे।
हाँ, जैसे चौरी चौरा के बाद।
बिल्कुल, तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अहिंसा पर उनकी अटूट पकड़ उनकी रणनीतिक ताकत थी जिसने लाखों लोगों को जोड़ा, या ये एक सीमा थी जिसने कई बार स्वतंत्रता संग्राम की गति को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर रोक दिया।